તારીખ 12/11/1995 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 371 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું મુંબઈમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 129
શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 371 કલોલના કુંવરજીભાઈ કરીને મુમુક્ષુ છે, એના ઉપર આ પત્ર લખાયેલો છે. શ્રી કલોલવાસી જિજ્ઞાસુ શ્રી કુંવરજી પ્રત્યે નિરંતર જેને અભેદ ધ્યાન વર્તે છે એવા શ્રી બોધ પુરુષના યથા યોગ્ય વારસો શું કે છે? પચીસમું વર્ષ છે. નિરંતર અભેદ ધ્યાન વર્તે છે, નિજ સ્વરૂપનું ધ્યાન છે, જેમાં જે ધ્યાનમાં ભેદ વિકલ્પ નથી. વિકલ્પથી જે ભેદ ઉત્પન્ન થાય એવું નથી, પણ નિર્વિકલ્પ અભેદ ભાવરૂપ એવું ધ્યાન વર્તે છે પોતાને. એવા બોધ સ્વરૂપ, પોતે જ બોધ સ્વરૂપ છે કૃપાલુ દેવ, પોતે જ બોધ સ્વરૂપ છે. એવા બોધ સ્વરૂપના યથા યોગ્ય માણસો અત્રે ભાવ પ્રત્યે તો સમાધિ વર્તે છે, અત્રે ભાવ પ્રત્યે તો સમાધિ વર્તે છે અને બાહ્ય પ્રત્યે ઉપાધિ જોગ વર્તે છે. એટલે કે અમારા ભાવમાં સમાધાન રહે છે અને બહારમાં જે દ્રવ્ય એટલે કે કંઈક કાર્યો જે છે એમાં અનેક પ્રકારના એવા કામ છે કે જે ઉપાધિવાળા કામ છે, એવા કામ રહે છે. પાંચમાં જ રાખવું પડશે. વાંચવામાં નહીં કામ આવે, સાથમાં આમ રાખો તો સિદ્ધિ લાઈટ પડે. તમારા આવેલા ત્રણ પત્રો પ્રાપ્ત થયા છે. અને તે કારણથી પ્રત્યુત્તર લખ્યો નથી. કયા કારણથી? કે અંદરમાં અભેદ, અંદરમાં સમાધિ વર્તે છે અને બહારની અંદર ઉપાધિ વર્તે છે, એ કારણથી તમારા ત્રણ પત્રોનો ઉત્તર નથી લખી શકાયો. આ કાળનું વિષમપણું એવું છે કે જેને વિશે ઘણા વખત સુધી સત્સંગનું સેવન થયું હોય તો જીવને વિશેષ લોભ ભાવના ઓછી થાય અથવા લોભ પામે. એટલે અત્યારે લોકસંજ્ઞા વાળા જીવો જ લગભગ ધર્મના ક્ષેત્રમાં હોય છે. એવો જ કાળ છે કે મોટાભાગના જીવો લોકસંજ્ઞા વાળા હોય છે. લોકસંજ્ઞા એટલે શું? કે જ્યાં જે લોકો એકઠા થતા હોય એ લોકો પ્રત્યે દ્રષ્ટિ રહ્યા કરે. એટલે ઘણા વખત સુધી સત્સંગમાં રહે તો એમાં ફેર પડે, નહી તો ફેર પડવો મુશ્કેલ છે. અહીંયા લોક ભાવના કહી છે કે ઘણા વખત સુધી સત્સંગનું સેવન થયું હોય તો જીવને વિશેથી લોક ભાવના ઓછી થાય, કાં તો એ લોકસંજ્ઞા ઘટે કાં લોકસંજ્ઞાનો નાશ પામે. શેનાથી? સત્સંગ ઘણો મળે તો. ઘણા વખત સુધી સત્સંગમાં રહે તો એટલો ફાયદો થાય. એવો અત્યારે કાળ છે એટલે એવા અત્યારે ઓછી યોગ્યતાવાળા જીવો જોવામાં આવે છે. લોભ ભાવનાના આવરણને લીધે પરમાર્થ ભાવના પ્રત્યે જીવને ઉલ્લાસિત પરિણતિ થાય નહીં, અને ત્યાં સુધી લોક સહવાસ તે ભાવરૂપ હોય છે. બહુ સારી વાત કરી છે સમજવા જેવી, કે જ્યાં સુધી લોક ભાવનાનું આવરણ વર્તે છે, લોક ભાવનાનું પરિણામમાં આવરણ વર્તે છે, લોક ભાવના ચાલુ રહીએ છે ત્યાં સુધી પોતાના પરિણામમાં આવરણ વર્તે છે, કે જે આવરણને કારણે જીવને પરમાર્થ ભાવના પ્રત્યે ઉલ્લાસિત પરિણતિ થતી નથી. પરમાર્થ ભાવના પ્રત્યે જે ઉલ્લાસ થવો જોઈએ એ ઉલ્લાસ થતો નથી. હિન્દીમાં લઈએ કે જબ તક લોક પ્રતિ કે ભાવ વિશેષ રહેતા હૈ, કે લોકો લોભ મેં મેરી ઇજ્જત આબરુ કીર્તિ બરાબર રહે કે રહેતી હૈ કે નહીં રહેતી, ઉસકી સાવધાની ઉસકી દરકાર, ઇસ પ્રકાર કે પરિણામ જ્યાં તક લોક ભાવના કા પરિણામ હૈ વહાં તક પરમાર્થ ભાવના કા પરિણામ મેં જોર સે ઉલ્લાસ સે પરિણમન નહીં આતા. इसका ये बात इस तरह से विचारने योग्य है कि यदि किसी जीव को ऐसा अनुभव हो कि हमको आत्मकल्याण का भाव तीव्रता से क्यों नहीं आता है, हमारे परिणमन में बलवानपणा क्यों नहीं रहता है, परिणाम क्यों शिथिल रहता है, उल्लास से આત્મકલ્યાણ હોવે એસા પરિણામ ક્યો નહીં હોતા હૈ, યહી કારણ હૈ કે લોક ભાવના તીવ્ર હૈ. યહાં તક લોક ભાવના તીવ્ર હૈ પરમાર્થ કી ઉલ્લાસિત પરિણતિ નહીં આયેગી. ઇસલિયે યે તલાશ કર લેની ચાહીએ, વો ચેક કર લેના ચાહીએ, અવલોકન કરના ચાહીએ કે હમારી સગે સંબંધી યા જો ભી જાન પહેચાન જો ભી હમારી નાત જાત યા ગાંવ શહેર જ્યાં ભી હમકો લોગ પહેચાનતે હૈ ઉસમે હમારી આબરુ કીર્તિ હમારી ઇજ્જત ઉસ સંબંધી હમારા પરિણામ તીવ્રતા સે ચલતા હૈ તો પરમાર્થ કે વિષય મેં ઉલ્લાસિત પરિણામ ચલેગા નહીં. એ સિદ્ધાંત હો ગયા. इस बात का ये सिद्धांत हो गया. हाँ हाँ ठीक है, प्रश्न अच्छा है. बाह्य विवेक में प्रश्न वो है कि लोक संज्ञा और बाह्य विवेक उस विषय में भेद रेखा क्या है, तफावत वही दिखना है ना, भेद रेखा क्या है. हम बाह्य विवेक करें तो लोक संज्ञा में चले जाते हैं, या लोक संज्ञा को हम लोक संज्ञा का तिरस्कार करें तो हमारा बाह्य विवेक મિટ જાતા હૈ યા છૂટ જાતા હૈ, ક્યા બાત હૈ? ઠીક હૈ. प्रश्न और स्पष्ट करते हैं। तो जो बाह्य विवेक है वो व्यवहार के विषय में होता है, बाह्य विवेक है वो बाह्य व्यवहार का विषय है, और लोक संज्ञा की उपेक्षा ये परमार्थ का विषय है। परमार्थ परमार्थ के स्थान में है और व्यवहार व्यवहार के स्थान में है। लोगों के बीच में लोक संबंधित यथोचित व्यवहार होना उसको बाह्य विवेक कहते हैं, और लोगों की मुख्यता करके आत्मकल्याण को गौण करना उसको लोक संज्ञा कहते हैं, लोक भावना कहते हैं। दोनों का कार्य क्षेत्र ही भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, एक कार्य क्षेत्र नहीं है। इस तरह से दोनों अपने अपने स्थान में यथार्थ रूप से होना चाहिए। उसमें एक सूक्ष्मता और भी है, जो प्रश्न निकला है तो उसका स्पष्टीकरण और करें कि बाह्य विवेक यथोचित व्यवहार करना हो करना चाहिए या होना चाहिए, और वो बात ठीक है अपने स्थान में। फिर भी इसका इतना वजन नहीं होना चाहिए कि इसका आग्रह हो जाए। अगर इसका आग्रह हो जाएगा तो ये अभिप्राय हो जाएगा, अभिप्राय में से ये मताग्रह हो जाएगा, क्योंकि अभिप्राय मत मत संबंधित होता है। और जब इसका इस पर वजन होना चाहिए इससे ज्यादा हो जाएगा तो बैलेंस आउट हो जाएगा। तो ये पूर्वग्रह बन जाएगा, और ये पूर्वग्रह बनने से परमार्थ के विषय में नुकसान हो जाएगा परिणाम में। और स्पष्ट करें इस विषय को, थोड़ा सूक्ष्म विषय है कि व्यवहार के विषय में हमारी बात सच्ची है, व्यवहार के विषय में हमारी बात सच्ची है, इसलिए हम हमारे व्यवहार को ठीक रखते हैं। वहां तक तो बात ठीक है, लेकिन हमारा हमारी बात सच्ची है ठीक है इस पर उतना वजन है कि दूसरे के व्यवहार के प्रति हमारा आग्रह बन जाता है, और दूसरे का व्यवहार यदि हमको ठीक नहीं देखता है तो हमारे परिणाम बिगड़ने लग जाते हैं। ये हो गया पूर्वाग्रह, ये हो गया अपना मत का आग्रह यानी मताग्रह। दोषारोपण करे नहीं करे अलग बात है, लेकिन परिणाम तो अवश्य बिगड़ेगा कि इसको ऐसा क्यों होता है। मतलब शायद उसका दोष हो भी, दोषारोपण तो जब कहते हैं कि दोष नहीं हो और आरोप करे तो दोषारोपण कहते हैं, अगले का दोष हो भी सकता हो। दोनों बात हो सकती है, नहीं भी हो और हमको दोष लगे, और दोष हो और दोष लगे, तो कुछ भी हो हमारा परिणाम इसके कारण से बिगड़े ये बात हमारे लिए ठीक नहीं है। हमारे परिणाम बिगड़ने नहीं चाहिए, ये नुकसान हमको होता है। पर ये नुकसान जब हमको होता है और हमारे कारण से होता है, और हम कहेंगे कि इसके कारण से होता है, ये बात हो जाएगी। जी
गोकुल वृत्ति होने से भी ऐसा भाव देखते हैं।
कौतूहल वृत्ति से दूसरे को देखते हैं और मात्र कौतूहल रहे तो कौतूहल का नुकसान तो होएगा, लेकिन परिणाम में उतना बिगाड़ नहीं होगा जितना जितना मताग्रह से होएगा, पूर्वाग्रह से होएगा, उतना नुकसान नहीं, इतना नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि दोनों प्रकार का अलग अलग वो दोष है। कौतूहल भी एक दोष है और पूर्वग्रह या मताग्रह वो भी एक दोष है, दोनों दोष हैं। दोष तो दोष होता है, दोनों का प्रकार अलग अलग है।
जब हमारा दोष हमारे अंदर कोई विकृत भाव उत्पन्न होते
हैं,
अगर हमारे अंदर कोई विकृत भाव उत्पन्न होते हैं और उसका दोषारोपण हम सामने पे डालते कि उसके कारण से हुआ, इसका मतलब कि हमारे मूल में भूल है।
हाँ, उसका कारण यह है कि अभिप्राय में वो बात है कि मेरी बात सच्ची है, इसलिए मेरी भूल मेरे से नहीं है, इनके कारण से मेरा परिणाम बिगड़ा, इनके कारण से, क्योंकि मेरी बात तो सही है, व्यवहार तो ऐसा ही होना चाहिए, इसका व्यवहार यथोचित नहीं है, तो इनके कारण से मेरे परिणाम बिगड़ते हैं, क्योंकि मेरी बात तो सही है। इस प्रकार की पकड़ आ जाती है, वो भी ठीक नहीं है।
कोई भी चीज का पकड़ तो ठीक नहीं
है,
कोई भी चीज का व्यवहार से रिलेटेड पकड़ तो ठीक नहीं।
हाँ, भले सही व्यवहार हो लेकिन उस पर वजन नहीं होना चाहिए, उसकी पकड़ नहीं आनी चाहिए। और एक स्पष्टीकरण इस विषय में बहुत बढ़िया है, वो ऐसा है कि जो ज्ञानी होते हैं, जो मोक्ष मार्ग में चलने वाले धर्मात्मा होते हैं, उनका व्यवहार दूसरों से ऊंची कोटि का, उच्च कोटि का होने के बावजूद भी उनको अपने व्यवहार पर वजन कभी नहीं जाता, इसका वजन परमार्थ पर हमेशा रहता है। पर ऐसा व्यवहार ही सबसे उच्च कोटि का व्यवहार है, जिसको व्यवहार पर वजन नहीं, यथोचित व्यवहार होने के बावजूद भी, योग्य व्यवहार होने के बावजूद भी व्यवहार पर वजन नहीं है, ये सबसे उच्च स्तर का व्यवहार है। और जिसका व्यवहार यथोचित हो, योग्य हो और उस पर वजन जाएगा, उसको इस व्यवहार का अहम भाव आए बिना रहेगा नहीं, वजन जाने से एक नया दुर्गुण पैदा हो जाएगा, वो पीछे के दरवाजे से एंट्री लेता है। ये जो अहम भाव है वो पीछे वाले दरवाजे से अंदर आ जाता है, वो खुद को पता नहीं चलता है, क्योंकि आया पीछे से, सामने से आया तो दिख जाता, वो दिखता नहीं उसको खुद को, क्यों? ऐसा व्यवहार तो यहां तो ऐसा ही व्यवहार होना चाहिए, तो उस पर जो वजन ऐसा ही होना चाहिए, जो वजन गया वो अहम भाव को शुरू शुरू में सूक्ष्म रूप से उत्पन्न करता है और बाद में वो अपना स्थूल स्वरूप को प्रकट किए बिना रहता नहीं है, ऐसा हो जाता। ये सब बातें बहुत सूक्ष्मता से अपने लिए विचार करनी चाहिए और ऐसा कोई बात हो तो अवलोकन करके निकाल देना चाहिए।
लोक संज्ञा वाला जो बोले ना, आत्म कल्याण को कौन करके भी लोक संज्ञा,
फिर से
लोक संज्ञा वाला जो है ना, आत्म कल्याण को भी कौन कर देते हैं लोक
संज्ञा के। हाँ हाँ, तो क्या है, लोक संज्ञा किसने को कहते हैं, लोक भावना किसको कहते हैं, कि जिस लोगों की मुख्यता करके अपने आत्मकल्याण को गौण किया जाए। क्यों दोनों चला गया? लोगों की मुख्यता में, लोगों के प्रति दृष्टि रहने से, अपना आत्मकल्याण को चुक जाना, गौण कर जाना, इसको लोक संज्ञा कहते हैं, लोक दृष्टि भी कहते हैं और लोक भावना भी कहते हैं। ये तीनों एक अर्थ है। कृपालु जी तीनों प्रकार के शब्द का प्रयोग करते हैं। और तब तक जहां तक ऐसी लोक भावना या लोक दृष्टि रहती है, ये लोक भावना भव रूप होती है, तो भव का नया भव का कारण बनती है। भव रूप मैंने भव भ्रमण का कारण लोक संज्ञा है, उसको समाज प्रतिबंध भी कहते हैं और ये भव का कारण है। इसलिए मुमुक्षु को चाहिए कि अपने आत्म कल्याण की मुख्यता में वो समाज को एकदम गौण कर दे। समाज जो भी कहे, समाज में समाज को जो भी लगे लगने दो, मेरे आत्म कल्याण की मुख्यता है मुझे, और इसके आड़े समाज आता है तो मुझे समाज की कोई परवाह करनी चाहिए नहीं।
ये व्यवहार
ऐसा है, हम आत्मकल्याण को मुख्य करें, व्यवहार व्यवहार के स्थान में अपने आप ठीक हो जाएगा। व्यवहार को ठीक करने के लिए व्यवहार की सावधानी की उतनी जरूरत नहीं है, जरूरत है परमार्थ की सावधानी की। अगर हम परमार्थ में सावधान हुए और पारमार्थिक कार्य हमारा बराबर चलता है तो व्यवहार अपने स्थान में यथा योग्य हो ही जाएगा। अगर कोई क्षति रहेगी तो भी उससे उतनी कोई तकलीफ नहीं होने वाली है, लेकिन हम परमार्थ के जो हमारा प्रयोजन का विषय है उस विषय में हमारी पकड़ को हम मजबूत रखें तो हमारी शक्ति यहाँ बराबर प्रयोग होगी तो व्यवहार व्यवहार के स्थान में ठीक ही रहेगा, उसकी इतनी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि सावधानी जो है वो दो जगह रखने बहुत कठिन है। जो परमार्थ में सावधान है वो व्यवहार की उपेक्षा करे तो उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है, कोई अनुचित नहीं है। लेकिन जो व्यवहार में सावधान है और जिसका परमार्थ गौण हो गया तो इसका व्यवहार यथा योग्य होने पर भी उस व्यवहार का कोई मूल्य नहीं है, ऐसी बात है। और इसका समर्थ में समर्थ कोई दृष्टांत है तो द्रविलिंगी मुनि का है। जो मुनि द्रविलिंग होकर के 28 मूल गुण को निरतिचार पालन करता है, दोष नहीं लगा देता, अतिचार का दोष नहीं लगता जिसको, लेकिन परमार्थ शून्य है, उसको सम्यक दर्शन की भी प्राप्ति नहीं है तो उसका व्यवहार का कोई मूल्य नहीं गिना जाता। तो द्रविलिंगी मुनि होने पर भी अनंत संसारी है, कैसा है, अनंत संसारी है। उसमें तो आता है एक पद में कि दुर्बल देह ने मांस उपवासी, मांस खमण ना उपवास करे छे, एक एक महीना ना उपवास, तो देह दुबला हो जाता है। दुर्बल देह ने मांस उपवासी जो छे माया रंग जो ने, वो मायाचार बोलते हैं उसको, तो पण भाव अनंता लेशे बोले बीजू अंग जो ने, उसमें हड्डी में से आवाज निकलता है कि आनंद भाव है उसका, तो ये दुर्बल देह हो गया लेकिन हड्डी क्या बोलती है अंदर से कि आनंद भाव करने वाला है ये, तो क्यों आत्म कल्याण को सामने साधता है। दुर्बल देह ने मांस उपवासे जो छे माया रंग जो ने, तो पण गर्भ अनंता लेशे, गर्भ मैंने जन्म, तो पण गर्भ अनंता लेशे बोले बीजू अंग जो ने, दूसरे अंग में से ये आवाज निकलती है कि भी अनंत गर्भ कम में वो जाने वाला है। इतले व्यवहार ने परमार्थना विषय में जो पॉलिसी छे एने ज्ञानी नो मार्ग कहेवामां आवे छे। ज्ञानी ने आज्ञा ए चालो बधु ठीक थी जाए।
जैसे अपना कोई भी यथार्थ भावना रहे, यथार्थ भावना में हम रहे और हमारे इससे कोई प्रकार का मर्यादा, बाह्य मर्यादा का कोई प्रकार का उल्लंघन बाह्य में बने, उसके कारण अन्य जीवों के परिणाम बिगड़ करके वो मार्ग से दूर जाए, उसके कारण हम हमारा बाह्य व्यवहार को थोड़ा ठीक करें, थोड़ा मर्यादा में, तो ये क्या लोक संज्ञा में जाएगा कि किसी
वो लोक संज्ञा में नहीं जाएगा,
बाह्य विवेक में जाएगा।
लोक संज्ञा में कब जाएगा कि भावना में कमी होगी तब। अगर हमारी भावना भावना के स्थान में कम नहीं होती है और व्यवहार ठीक करते हैं तो ठीक है, अच्छी बात है, उसमें कोई तकलीफ नहीं है।
अपनी भावना को दबाना पड़े तो
दबाना पड़े, लेकिन कम तो नहीं होती है ना,
वृद्धि तक तो होती है,
बस बात खत्म। दबाने से कम होती हो ये नहीं होना चाहिए,
दबाने से तो उछलेगी,
दबाने से और मजबूत हो जाएगी,
पर दबाना चाहिए।
कभी कोई प्रसंग उचित ऐसा करना पड़े तो दूसरी बात होगी,
पर हर प्रसंग पे करना पड़े तो
हर प्रसंग ये कर ही नहीं सकोगे,
करना पड़े तो
नहीं, करना पड़े तो सवाल ही नहीं रहता है।
तो कभी किसी के साथ ऐसा परिस्थिति भी हो सकता है कि उसको हर पग पे अपना भावना को दबाना ही पड़ता हो, तो
क्या फटेगी, फिर जोर से आएगी तो फिर उसका पावर फट जाएगा। वो चीज बलवान होती है, भावना है वो उतनी बलवान होती है कि भावना के बल के आगे किसी का बल नहीं चलता, कुदरत का भी नहीं चलता। 14 ब्रह्मांड को शून्य होना पड़े, भावना कमजोर हो अलग बात है, क्योंकि भावना का बलवानपना विश्व में इससे बलवान कोई चीज है ही नहीं। ये पराभक्ति क्या चीज है, भावना है। परब्रह्म परमात्मा केवल निर्विकार होने पर भी उनको वश होना पड़ता है वो पराभक्ति के पास, वो क्या चीज है, वो भावना ही है। तो निज परमात्मा को वश होना पड़ता है फिर जगत में इससे कौन बलवान है, अनंत सामर्थ्य और अनंत शक्ति तो उसमें भरी है, परमात्मा द्रव्य में भरी हुई है, फिर भी इसलिए लोगों की भावना लोक भावना से लोक सहवास प्रिय लगता है, लोक भावना से लोक सहवास प्रिय लगता है कि हम ऐसे लोगों के बीच में रहे जहां हमारी कीर्ति यश गाथा बराबर हमको सुनने सुनने को मिलती रहे। ये लोक सहवास भाव रूप होता है, ये भाव भ्रमण का कारण हो जाएगा। का सेवन जो निरंतर इच्छता है, ऐसे मुमुक्षु जीव को, कैसा मुमुक्षु लिया है कि जो मुमुक्षु का अभिप्राय और भावना ऐसी है कि मुझे निरंतर सत्संग में रहना है, ऐसा कोई मुमुक्षु है, उसको जब तक यह योग का विरह रहता है वहां तक दृढ़ भावना, दृढ़ भाव से यह भावना इच्छित करके प्रत्येक कार्य करते हुए विचार से वर्त करके अपने में लघुत्व मान्य करके अन्य ज्ञान वार्ता, ऐसा ज्ञान लेख या ऐसा ग्रंथ का कुछ कुछ विचार रखना, वही योग्य है। बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, व्यवहार और परमार्थ का संतुलन कैसे रखें, ऐसी बात की है। तो वाक्य लंबा चौड़ा है, अपन उसका टुकड़ा टुकड़ा करके इस पर स्वाध्याय करेंगे कि सत्संग का सेवन जो निरंतर चाहता है, ऐसे मुमुक्षु को सत्संग की ऐसी भावना हो, मुझे तो निरंतर सत्संग में ही रहना है, ऐसे मुमुक्षु जीव को जब तक सत्संग का विरह रहता हो, योग नहीं मिलता हो, विरह में रहना पड़ता हो, उसको दृढ़ भाव से यह भावना की इच्छा करना, सत्संग की भावना दृढ़ता से करते रहना, ये ना आएगी उसको। करना मतलब क्या है कि उसको सत्संग में रहने की भावना और दृढ़ हो जाएगी। विरह के कारण से भावना में कमजोरपना नहीं आएगा, कमजोरी नहीं आएगी, उसकी भावना और दृढ़ हो जाएगी। ये सहज है। और प्रत्येक कार्य करते हुए उनका यही विचार चलेगा कि मुझे सत्संग में रहना है, जैसे कैसे भी मुझे सत्संग में रहना है। वो सत्संग है, वो द्रव्य सामीप्य है, प्रत्यक्ष सत्संग का योग है वो द्रव्य सामीप्य है, और भावना है वो भाव सामीप्य है। द्रव्य और भाव से ऐसा सामीप्य का मेल है उसमें। और अपने विषय लघुत्वपना मान्य करके ऐसे भावना वाले को विनम्रता होती है, सहज रूप से लघुत्व मैंने विनम्रता, उसका स्वीकार करके अपना जो जो दोष दिखने में आए, इस दोष की का नाश की चाहना हो, गए मेरे ये दोष मिट जाए, निवृत्ति इच्छे, तो उसने निवृत्ति इच्छे कि इस दोष नाश हो जाए, ये दोष मुझे नहीं हो, मेरे ऐसे दोष का अभाव हो जाए, ऐसी चाहना रखते हुए सरलपने से वर्तन करना, असरलता से वर्तन नहीं करना, किसी के साथ सरलपने से वर्तन करना,
वर्तन करना
मैंने जिसके साथ हमारा व्यवहारिक प्रसंग पड़ता हो सरलता से काम लेना है सबसे, असरलता से नहीं वर्तन करना है। जो काम हमारे से बनता है तो कर ले, नहीं बन नहीं बनता वो तो सरलता से कहें। उसमें तो अनेक प्रकार का प्रसंग पड़ता है, जिसका जैसा उदय हो ऐसा प्रसंग पड़ता है। सरलता रखना मतलब सरलता रखना, पकड़ में नहीं रखें। और सरलता कब होती है कि जीव छोटी मोटी बात में पकड़ कर लेता है तब असरलता होती है। अब व्यवहारिक कार्यों में क्या मूल्य होता है, जगत के प्रसंग का मूल्य क्या? कोई मूल्य नहीं है। तो इसका मूल्य नहीं है तो इसकी पकड़ हम क्यों करें? साढ़े आठ पौने नौ तक नहीं। तो सरलता से हो सके वहां तक परेच्छानुचारी हो जाए, हो सके वहां तक लेट गो करे, वो सरलता है, व्यवहारिक सरलता है। इस प्रकार से वर्तन करे। ऐसे वर्तन करने से क्या फायदा है कि क्लेश के प्रसंग कम हो जाएंगे। जिसको अपने आत्म शांति का प्रयोजन है, जिसको भी अपने आत्म शांति का प्रयोजन है वो अशांति से दूर जाएगा, दूर भागेगा और जैसे कैसे भी शांति बनी रहे उस प्रकार का वर्तन करेगा तो उसमें सरलता रहेगी। क्योंकि जगत में ऐसी एक परिस्थिति है कि अगर हम सरल नहीं होते तो अगला भी असरल हो जाएगा। अपने गुजराती में कहावत है, आडे लाकड़े आडो वेर, मतलब लकड़ा आडा होता है तो उसको करवट चलाते हैं तो सीधी नहीं चलती है, वो भी आड़ी जाती है। ऐसा हम असरलता करेंगे तो सामने वाला भी असरलता करेगा, और हम सरलता से वर्तन करेंगे तो अगला भी सरलता से वर्तन करेगा, बहुभाग ऐसा बनेगा। कभी नहीं बने तो उसमें उसके हमको कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन बहुभाग ऐसा बनेगा। हाँ, उस वक्त अपन उस गैर लाभ को नहीं उठाने दे तो कोई उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर हमारे ख्याल में आया कि कोई इसका खोटा फायदा उठाता है तो हम उसको बोल दे भाई हमारी सरलता का ऐसा फायदा मत उठाओ। बोल सकते हैं, कह सकते हैं। लेकिन सरलता रखने से कभी नुकसान होता है तो भी सरलता को त्याग नहीं करना चाहिए, सरलता की मुख्यता ज्यादा रखना। सरलपने से वर्तन करना ठीक है, सीधी सादी बात पॉलिसी वो है, हमको आत्म कल्याण में आगे बढ़ना है और वो पारमार्थिक सरलता है। पारमार्थिक सरलता की मुख्यता होने से व्यवहारिक सरलता सहज होती है, सहज होती है। जो सरलता का वर्तन करने वाला होता है वो परेच्छानुचारी होता है, वो परेच्छानुचारी होता है। क्यों? क्योंकि वो लेट गो करता है, चलो आप ऐसा कहते हैं तो हम ऐसा कर लेंगे, हमको क्या फर्क पड़ता है। वो देखता है कि हमको क्या फर्क पड़ता है, हमको तो कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वो कर सकता है परेशान होकर अपना से वर्तन करता है। और जो कार्य करके यह भावना की उन्नति हो, किसके सत्संग की भावना बढ़े, सत्संग की भावना बढ़े ऐसा कहो या आत्मकल्याण की भावना बढ़े ऐसा कहो, एक ही बात है। इस भावना की उन्नति हो ऐसी ज्ञान वार्ता रखना योग्य है। ऐसा कोई लेख को पढ़ना, कोई ऐसे आर्टिकल को पढ़ना या लिखना वो ठीक है, या कोई ऐसे ही ग्रंथ को पढ़ना या स्वाध्याय करना जिससे हमारी भावना बढ़ती रहे। देखिए आत्मकल्याण की भावना जितनी तीव्र होगी उतनी पात्रता आएगी और उतना हमारा आत्मकल्याण का कार्य सरल और सुगम हो जाएगा। कोई कोई भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव हो किसी की कोई आपत्ति नहीं होगी। अंदर से भावना वृद्धिगत करनी चाहिए, बढ़ानी चाहिए, तीव्र होनी चाहिए और वो हम कर सकते हैं। इसके लिए कोई बाह्य साधन की अपेक्षा नहीं है, कोई अपेक्षा नहीं है। ऊपर बताई है, दर्शाई है यह जो बात, उसमें बाध करने वाले ऐसे बहुत प्रसंग तुम जीवों में वर्तता है ऐसे हम जानते हैं। देखो कृपालु देव कभी कभी मुमुक्षुओं को स्पष्ट बोल देते थे कि आप लोगों में किस प्रकार का दोष है, और ऐसा दोष बताने वाले ज्ञानी परम हितेच्छु है ऐसा स्वीकार करना चाहिए। अगर वो दोष नहीं बताएंगे तो सुधार भी कैसे होगा। बहुत साफ बताया है कि ऊपर जो हमने बात लिखी उसमें बात करने वाले ऐसा प्रसंग मैंने सत्संग की भावना में बाधक हो गए, ऐसे प्रसंग में आप लोग शरीक होते हैं, ऐसे प्रसंग में आप लोग इन्वॉल्व होते हैं और आपकी सत्संग की भावना है उसकी दरकार नहीं रहती है, या वो भावना कम हो जाती है, या इस भावना का ख्याल नहीं रहता है और सत्संग गौण हो जाता है, इस प्रकार का दोष आप लोगों में है ऐसा हम जानते हैं। तथापि ऐसे ऐसे बात करने वाले प्रसंग के प्रति जितना हो सके उतना सदुपयोग से विचार करके वर्तने की इच्छा करना, यह अनुक्रमे बन सके ऐसा है। क्या कहते हैं कि ऐसे ऐसे बात करने वाले प्रसंग, सत्संग में बात करने वाले प्रसंग आ जाए, ये लौकिक प्रसंग है, लौकिक कार्य है, वो व्यवहार का होता है, व्यापार का होता है, घर कुटुंब का होता है, समाज का होता है, कुछ भी होता हो, नाच जात का होता है, संस्था का होता है, कोई भी हो, सत्संग में बात करने वाले जो प्रसंग है उसमें सावधान होना, सदुपयोगी वर्तन करना मतलब सावधान हो जाना, मुझे मेरा सत्संग गौण करना नहीं है। अरे अन्य मति लोग भी ऐसे दृढ़ता वाले होते हैं जो अंधश्रद्धालु होते हैं। देखो भाई, ये मेरा पूजा का समय है, मैं नहीं मिल सकता, जिसको मिलना है वो पहले आ जाए या पीछे आ जाए, उस टाइम में मैं मिलता नहीं किसी को। ऐसे दृढ़ता वाले बहुत होते हैं, अंधश्रद्धा वाले भी इतने दृढ़ होते हैं। तो जो अब आत्मकल्याण के लिए विचारवान जीव है उनके तो दृढ़ता होनी ही चाहिए। वो कह सकते हैं जिसके साथ काम पड़ता है, प्रसंग पड़ता है, उन लोगों को वो कह सकते हैं कि देखो भाई, ये मेरा सत्संग का समय होता है, इस समय में मैं कुछ नहीं कर सकता, अब आगे पीछे एडजस्ट कर लो या मेरे बिना चला लो, अगर मैं नहीं हूं तो क्या फर्क पड़ता है आप लोगों को, क्या मैं आगे पीछे, मेरा कोई काम हो तो मैं कर लूंगा, लेकिन मेरे सत्संग में बात मत बाधा आए, वो बात मेरे से नहीं हो सकती। अगला समझ जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ सकता है, और फिर भी अपन अपने मकमता में रहे तो आज नहीं तो कल समझेगा, समझना ही पड़ेगा उसको। लेकिन बलवानपना अपना चाहिए, अपना शिथिलता नहीं होनी चाहिए। कोई प्रकार से मन में विशेष संताप प्राप्त होना योग्य नहीं, पुरुषार्थ जो कुछ हो वो करने की दृढ़ इच्छा रखना योग्य है, और परम ऐसा जो बोध स्वरूप है उसकी जिसको पहचान है, ऐसे पुरुष को तो निरंतर ऐसे वर्तन करने का पुरुषार्थ में, उलझन में या अकुलाहट में आना योग्य नहीं है। क्या कहते हैं कि किसी भी प्रकार से मन में संताप मैंने खेद रखना योग्य नहीं है, दुखी होना योग्य नहीं है, और पुरुषार्थ करने की दृढ़ इच्छा रखना योग्य है। जोर से, बलवानपने से, मक्कम परिणाम से हमें हमारा आत्मकल्याण करना है, ऐसा इच्छा या अभिप्राय करना, और परम ऐसा जो बोध स्वरूप है, मैंने ज्ञानी पुरुष, उसकी जैसा जिसको पहचान हुई हो या विश्वास आया हो, उसको तो निरंतर उस प्रकार से वर्तने का पुरुषार्थ में, मक्कमता से वर्तना का पुरुषार्थ में, उलझन में या मुंझवण में या अकुलाहट में आना योग्य नहीं है। उनको तो जरा जोर से काम लेना ही है, उसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है।
परमार्थ के लिए व्यवहार एकदम
गौण कर देना, हाँ क्या है, परमार्थ के लिए व्यवहार गौण करना, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अनंत काल से व्यवहार को मुख्य करके परमार्थ को गौण किया ही है। अब व्यवहार को गौण करके परमार्थ को मुख्य करे तो उसमें कोई अनुचित नहीं है।
हम लोग का क्या होता है, व्यवहार को तो गौण कर देते तो परमार्थ आती
है,
व्यवहार को गौण कर देंगे तो परमार्थ आती है,
परमार्थ व्यवहार को गौण करे तो
परमार्थ आती है, व्यवहार को गौण करने में वचन चला सकती, व्यवहार कौन हो का मतलब परमार्थ मुक्ति हो रहा है, व्यवहार को गौण कर देते पर परमार्थ आती नहीं आता, तो आधार पकड़े बिना बाहर में हम लोग हेर फेर करते हैं तो भूल हो जाती
है। परमार्थ को मुख्य करते हुए व्यवहार सहज गौण हो जाए तो ठीक है, लेकिन व्यवहार का तो कौन करे और परमार्थ की प्राप्ति नहीं करे, तो ये गड़बड़ होगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात तो ठीक है, और भी दो चार बातें हैं चर्चा करने योग्य है, वो कल के स्वाध्याय में लेंगे।